भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 34वें श्लोक के ऊपर संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। खास करके इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक ऐसा वाक्य है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मति ही संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। इफ द इल्यूजरी एनर्जी सबसाइड्स एंड द लिविंग एंटिटी पर्च्ड विथ नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड देन ही बिकम्स एट वंस एनलाइटन विथ सेल्फ रियलाइजेशन एंड दस बिकम्स सिचुएटेड इन हिज ओन ग्लोरी। उपरता देवी माया वैशारदि मति संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। इसका अनुवाद है कि अगर माया शक्ति का प्रभाव पद जीवों पे धीरे धीरे घटता जाएगा और अगर वो पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त होगा भगवान की कृपा के द्वारा, तब तुरंत वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन जाएगा और इस तरह से अपनी मूल स्वरूप में बहुत जल्द ही स्थित हो जाएगा। तो ये अध्याय भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन यहां हो रहा है, क्योंकि ऋषि मुनि ने पूछा था कि भगवान के अलग अलग अवतार हैं, इनके बारे में वर्णन कीजिए। और यहां से वर्णन हुआ है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। अब ये सब करने के बाद यहां बता रहे हैं भगवद गीता में जो वर्णन है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। कहे अर्जुन, जो मेरे ये तत्वतः जान जाता है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है पूर्ण रूप से दिव्य है, ऐसा व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने पर फिर से एक भौतिक शरीर को प्राप्त नहीं करता, पर एक मेरे धाम को आकर एक आध्यात्मिक शरीर मेरे समान प्राप्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य का मतलब क्या है कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म जो हैं वो भौतिक संसार के नियम के अनुसार काम। हम यहां जन्म लेते हैं हमारे पिछले कर्मों के कारण, और हम जो कर्म कर रहे हैं कुछ फायदा मिलेगा ताकि हम इस संसार में भोग कर सके, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर कुछ उसका फायदा नहीं मिले कौन काम करेगा। अगर हमको कहा जाए कि कुछ आपको सब पैसा ऐसा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, तो किसको स्फूर्ति होगी सब काम करने की जाके बाहर, कोई नहीं करेगा। पर भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, यहां आने की भी जरूरत नहीं है और यहां कुछ कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर यहां आते क्यों है, यहां बताया गया है त्यक्त्वा देहं दब जो धरती बस वही एक कारण है, कृपा पूर्वक वो आते। तो जब भगवान के जन्म उनके बारे में सुनते हैं, किस प्रकार से अपनी ही शक्ति को धारण करके संभवामी आत्ममाया, अपने अंतर में शक्ति के द्वारा मैं यहां अवतरित होता हूं, लीला करता हूं, चले जाता हूं। लीला मतलब पूर्ण रूप से उनको नियंत्रण है उनके कार्यकलापों में, जब चाहे वो रोक सकते हैं, जब चाहे, जैसे कोई ड्रामा कर रहा है, कोई राजा है या कोई दास है झाड़ू मार रहा है, पर उसको अच्छा नहीं लगा तो बंद कर सकता है, राजा के मुंह में आग फेंक झाड़ू फेंक देगा, मैं नहीं करूंगा ड्रामा, बस बहुत हो गया, जब चाहे रोक सकता है वो लीला है। लीला मतलब नाटक कर रहा है बस, पर हम नहीं कर सकते ऐसा, बहुत हो गया अभी जन्म मृत्यु कर रहा, बस अभी वापस जाना, एक थप्पड़ मारे बोले चलो काम करो फिर से। पर मतलब लीला मतलब अपनी इच्छा से आए कर रहे हैं, आनंद आ रहा है ठीक है, इसीलिए थोड़ा झाड़ू मारने का काम करेंगे, चलो इच्छा नहीं है ना ऐसी अपनी प्रसन्नता के लिए थोड़ा मनोरंजन। तो जब ये जान जाएंगे हम कि भगवान की जो जन्म और कर्म है ये पूर्ण रूप से दिव्य है, इसमें भौतिक कर्मश कोई नहीं है, तब हम भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हर एक जीव जो है भगवान का अंश है और अंश होने के नाते पूर्ण रूप से भगवान के जो सारे लक्षण हैं उसके अंदर भी है, कम मात्रा में भले क्यों न हो पर पूर्ण रूप से वो दिव्य है, जीव भी पूर्ण रूप से दिव्य है सच्चिदानंद। पर जब अपने आप को ये भौतिक शरीर स्थूल और सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार अपने आप को समझता है तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है। और जब उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं ये भौतिक शरीर और ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार मैं नहीं हूं और मैं पूर्ण रूप से सच्चिदानंद आत्मा हूं, तुरंत जो है वो मुक्तात्मा है, एक्चुअली वो मुक्तात्मा है, चाहे भौतिक संसार में हो भौतिक शरीर क्यों ना हो वो मुक्तात्मा है। और सिर्फ समय की बात है जब वो शरीर छोड़ेगा वापस भगवत धाम जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और आत्मा को जोड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर बस, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं नारियल है, जब कच्चा नारियल है तो वो जो कटोरा है उसमें चिपका रहता है वो, तो अगर वो ऊपर का जो कटोरा शेल जो कड़क होता है वो शेल उसकी तुलना जो है स्थूल शरीर से की गई और जो अंदर जो नारियल होता है उसकी तुलना आत्मा से की गई, तो बद्ध अवस्था में दोनों चिपका रहता है, उसको फोड़ दो तो उसको चाकू से खींचेगे तो भी थोड़ा चिपका रहता है वो आसक्ति जो है चिपका रहता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। पर अगर सूख जाए वो नारियल अंदर तो अपने आप वो ढीला हो जाता है नारियल और आप उसको हिलाओ तो आवाज आता है खड़खड़, मतलब सेपरेट हो गया वो ऑलरेडी अंदर मुक्ति हो गई उसकी, सिर्फ वो बाहर का भी कड़क है इसीलिए बस, और जैसा उसको फोड़ दिए तो पूरा का पूरा नारियल निकल जाता है, ये सेपरेट ये सेपरेट। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो तब उपलब्ध होता है जब हम अज्ञान में आ जाते हैं, माया मुग्ध जीवन नहीं सोता कृष्ण जीव कौन सा श्लोक है, माया माया तारे जपटिया धरे कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण को जब भूल जाए मतलब कृष्ण बनने की कोशिश इस तरफ से मुड़ जाते तो ये तुरंत अंतरंग शक्ति से हम तटस्थ शक्ति में होने के कारण बहिरंग शक्ति में आ जाते हैं, और बहिरंग शक्ति में जैसे आए तो एक शरीर मिलता है और एक सूक्ष्म शरीर देह मिलता है, बोले जाओ अभी तुम करो बनने की कोशिश करो, और जैसे जैसी इच्छा है वैसे वैसे एक शरीर मिलता है और जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं वैसा वैसा हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है और जीवन के अंत में जैसा सूक्ष्म शरीर है उसके अनुसार एक स्थूल शरीर मिलता है, और ऐसे हम लोग चल रहे हैं 84 लाख होने में। पर जब हमको यह समझ में आ जाता है कि हम एक्चुअली इन चीजों से अब भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, और जिस प्रकार भगवान का जो शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, इसी तरह से मैं भी आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, पर अभी मैं इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को मैं अपना समझकर मैं भटक रहा हूं। जब ये समझ जाता है आदमी तो तुरंत अंतरंग शक्ति जो है भगवान की और ये बहिरंग शक्ति है, ये सब बहिरंग शक्ति है और उसमें हम फंस गए, तो ये बहिरंग शक्ति जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है और अंतरंग शक्ति बढ़ जाता है और शुद्धिकरण बढ़ते रहता है। जैसे प्रभुपाद यहां उदाहरण दे रहे कि भगवान के लिए अंतरंग शक्ति ये बहिरंग शक्ति और ये पतत्व कुछ नहीं, भगवान के लिए एक ही शक्ति है बस, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान के लिए सब शक्ति एक ही शक्ति है सिर्फ, और एक शक्ति को दूसरा बना सकते हैं, अंतरंग को बहिरंग, बहिरंग को तटस्थ, तटस्थ को कुछ भी बना सकते हो, ये ग्लास को ऐसे हाथ मिलेंगे और बोलेंगे तुम चलो, तो चल सकता है, चलने लगेगा, बोलने लगेगा। और इसको ऐसा स्पर्श कर दिया जैसे नारद मुनि ने या किसी आल्या को साप दिया, बस अभी पत्थर बन जाओ तो पत्थर बन जाए। भगवान की कृपा से भक्त भी कर सकते, तो अंतरंग को बहिरंग बना दिया और बहिरंग को अंतरंग बना सकते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं, पर हमारे लिए नहीं हो सकता। तो जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो चाहे तो वही इलेक्ट्रिसिटी को अगर फ्रिज में डाल दिया, कनेक्शन दे दिया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सबको ठंडा कर देता है एकदम, सब चीजों को। पर वही इलेक्ट्रिसिटी को अगर हीटर में लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी वही है पर सब चीज को गर्म कर देता है। पर इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई फर्क नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। पर जो फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है जीव, उसके लिए हालत होता है। जो हीटर में बैठा हुआ है उसको चालू कर दिया तो उसको बहुत हालत होता है। तो हम अभी बहिरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति मतलब हीटर के अंदर है। संसार दावा नलली डलो का जल रहा है, और वो अगर उसको अगर फ्रिज जैसा लगा दे, निताय पर कमल कोटि तंद्र सुशीतला, वो ठंडा और अच्छा हो जाता है। तो क्या चीज है जो बहिरंग को अंतरंग बनाए? अभी बहिरंग शक्ति में हम फंस हुए हैं, पर उसके लिए दो स्विच है, दोनों स्विच को ऑन कर दे तो जो बहिरंग शक्ति है वो अंतरंग शक्ति हो जाएगी, और बहिरंग शक्ति जो आज हमें थक गई है वो दरवाजा खोल के बोलेगी आप बाहर निकलो, आपका काम यहां कुछ नहीं है। तो ये वाक्य बहुत ही पावरफुल है। देयरफोर बाय हिज ग्रेस द एक्सटर्नल एनर्जी विच इज एम्प्लॉयड इन इल्यूजनिंग दोज लिविंग बीइंग्स हु वांट टू हैव इट सबसाइड्स बाय द विल ऑफ द लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपेंटेंस एंड पेनेंस फॉर द कंडीशंस। बस तो उनकी कृपा से वो माया शक्ति जो बद्ध जीवन मोहित करने में, जो मोहित होना चाहते हैं इसलिए मोहित कर रही है, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो कम होती जाएगी, जिस हद तक रिपेंटेंस एंड पेनेंस पश्चाताप और तपस्या बद्ध जीव कर लेता है। बस वही एक स्विच है, ये दो स्विच को ऑन करो, अभी ऑफ है वो, ऑन कर दिया तो वही माया शक्ति जो बद्ध जीव को फंसा के रख रही है, हमारी इच्छा इसीलिए हम फंसे हुए हैं, वही छोड़ देगी उसको, उसको धक्का मारेगी, वो निकलो यहां से, बोल यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तो ये दो स्विच है जो रिपेंटेंस एंड पेनेंस, तीव्र पश्चाताप और तपस्या, फलस्वरूप, इसका फलस्वरूप क्या है? तपस्या। तो ये दो जब होगा तो वही माया जो हमें फंसाई है वो योग माया बन जाएगी और भगवान के साथ जुड़ा देगी। सो ये महामाया को योग माया में परिवर्तन करना है तो ये दो स्विच है बस, रिपेंटेंस एंड पेनेंस, पश्चाताप और तपस्या। तो ये जो पश्चाताप और तपस्या है ये भगवान की कृपा के द्वारा होती है, और क्योंकि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होगी। हम कौन है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो स्मृति भी वही देंगे अगर चाहे तो हम, और अगर नहीं चाहे, भूलना चाहे तो विस्मृति देंगे और ज्ञान भी वही देंगे। मतलब अंदर उनके हाथ में स्विच बोलना चाहिए, हम अगर प्रकट स्विच चालू करो तो हीटर देंगे और देंगे, तो वो डालने के लिए हमको बोलना, और हमसे बोलना कैसे, कैसा बोलना चाहिए कि प्रभु बहुत हो गया हीटर कूलर चालू करो आप, सिर्फ बोलने से नहीं, हमारी क्रिया दिखाएंगे विस्मृति से देंगे। और इस कार्य होगा में तो दृढ़ तपस्या करने की इच्छा है, उस हद तक वो माया शक्ति को महामाया से योग माया में परिवर्तित कर देंगे। तो हम सारे भक्तों के जीवन में भुलाने वाले भी भगवान हैं, याद दिलाने वाले भी भगवान हैं, और दैवी एषा गुण में मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितान्तरम्। बिना उनकी कृपा से ये पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, माया को हम बदल नहीं सकते, उनके हाथ में वो स्विच है। तो हम उनको तीव्रता से बोल सकते हैं कि भाई प्रभु आप हटा दो ये, और वो है ये दो चीज। तो भक्तों के जीवन में हम देखते हैं जैसे जगाए मदाय को जब कृपा हो गई, भगवान की चतुर महाप्रभु की खास कृपा हो गई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, तो उनके जीवन में ये दो चीज था। कृपा होने के बाद भी हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा के बाद उनका उद्धार हो गया और सब गए उधर, चतुर महाप्रभु कीर्तन करते करते अपने घर गए, जगाए मदाय भी उनके साथ चले गए, उनके तो पार्षद बन गए, वो तो हमेशा उधर रहते थे, और चतुर महाप्रभु कीर्तन करने लगे, तो उनका शरीर पूर्ण रूप से काला हो गया एकदम। बोले ये सब मैं ले लिया हूं, तुम लोगों का सारा चीज मैंने ले लिया, और उसके बाद कीर्तन किया चला गया। कुछ दिन के बाद माधाई नित्यानंद प्रभु के पास आया और कहने लगा, प्रभु के ठीक है आपने तो क्या कृपा कर दिया, भगवत प्रेम दे दिया, पर मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत लोगों को अनजाने में जाने थे जानते हुए और अनजाने में बहुत सारे जानबूझ के पिया, और पीने के बाद अनजाने में बहुत सारों को मैंने पिटाई किया, बहुत लोगों को तकलीफ दिया, और तो जाने अनजाने में बहुत तपस्या, मैंने बहुत लोगों को तकलीफ दिया, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो आपने दिया है कृपा किया वो ठीक है, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि इतना तकलीफ दिया हूं, बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं क्या करूं, और खास करके आपको मैंने मारा, आपने तो माफ कर दिया, बट इतने लोगों को मारा उसका मैं क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु बोले, नहीं, बहुत मुझे बुरा लग रहा है, नींद नहीं आ रहा, क्या करूं। बोले ठीक है, एक घाट बनाओ, और वहां जो भी लोग आएंगे, कोई भी लोग आएंगे घाट में स्नान के लिए, उनका मदद करो, उनको पानी निकाल के दो, उनको कपड़ा दो, कुछ भी। तो सबसे पहले अपने हाथों से घाट बनाया उसने, घाट बनाकर 24 घंटे वहीं रहता था, और जो भी आते थे कोई भी व्यक्ति बिना कोई भेदभाव के, जो भी वहां आता था, क्योंकि जैसे उसने नशे में बिना भेदभाव के सबको मारा पीटा था, अभी बिना भेदभाव के किसी देखे बिना सबकी सेवा करने लगा, और जो भी आता था उनको पानी उठा उठा के देता था, उनको स्नान करने के लिए उनके कपड़े खुद धो के दे देता था उनको। पर कभी कभी जिनको जिनके घर में उसने बहुत उत्पात किया था उनको याद आता था कि इसने ऐसा किया, हालांकि उसकी परिवर्तन हो गया, पर फिर भी तो उसको याद करते थे, तो पत्थर लेके उसको मारते थे उसको, क्योंकि मालूम है अभी वापस नहीं फेंके वो पत्थर, तो गुस्सा पूरा उस पर निकालते थे, पत्थर मारते थे उसको। पर माधाई को जब पत्थर लगता था तो उसे पत्थर को उठाता था और 4-5 पत्थर लेके हाथ में देता था उसको, तो बोले आप एक पत्थर मार के क्या कुछ भी नहीं होगा, मुझे मैंने कितने लोगों का बलात्कार किया है, मैंने कितने लोगों को मर्डर किया है, मैंने कितने लोगों को खत्म कर दिया है, लूटा है, जलाया उनके घर को, और हजारों लोगों को मैंने मारा, तुम एक शरीर को एक पत्थर मारने से क्या फायदा, और 10-15 मारो और जोर से मारो थोड़ा, तो मारते थे वो मारते थे, मार मार के फिर से ला के देता था। इतना करने के बाद वो देखकर उनका हृदय भी पिघल जाता था, तो जिसके प्रति उन्होंने उसने अपराध किया था उनका भी जब हृदय पिघल गया, अब साधारण से लोगों का भी हृदय पिघल गया, तो वो भी कहने लगा, अरे बाप रे ऐसा परिवर्तन हो गया इसके अंदर, चलो इसको हमने सही में माफ किया हृदय से, तब उन लोगों की कृपा हो गई, और जब तब माता को थोड़ा सांत्वना मिला, चलो कम से कम उन लोगों ने सब अभी सही में माफ किया, नहीं तो पूरा ना वो ये रखे होंगे अपना, वो भी खत्म हो गया। इसी तरह से ये सिर्फ वैदिक ग्रंथों में नहीं, इवन क्रिश्चियन इसमें भी देखते हैं, मेरी मैगडलिन वो ऐसी औरत थी, बहुत उसने मतलब वेश्या थी बेसिकली। तो मैं वो वीडियो देख रहा था जहां एक तत्व बहुत अच्छा से आता है, एक जगह मेरे आंखों से भी आंसू निकल गए, वहां नियंत्रण नहीं कर पाए। बहुत ही सुंदर है, पहले उसका जीवन दिखाते कैसे वो किसी के साथ संग करती है ऐसा। पर एक आदमी जो उससे मिलने को आता है उसके साथ संग करके जाता है, जाने से पहले बोलता है कि मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, बहुत महान आत्मा, जीसस है उसका नाम, वो आ रहा है यहाँ। तो बोलती है अच्छा मैं जाना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन जीती हूँ। एक दो ऐसा सीन दिखाते हैं जहाँ बच्चे लोग आते हैं और पत्थर फेंक के जाते हैं, उसको जला देते हैं उसका कपड़े को, तो सब गाली देते हैं, समाज के लोग सब गाली देते हैं, तो जब से यहाँ इस एरिया में आए सबसे हमारे बच्चे भी बिगड़ गए ये वो। तो उसको बहुत दुख लगता है, तो क्या करे उसको, उसी वो एक ही एक प्रोफेशन उसे मालूम है। और वो जब ये आदमी बता के जाता है कि ऐसा कोई महात्मा आ रहा है, तो उसको तीव्र इच्छा होता है उससे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और वो जाती है उस समय ये सर्मन ऑन द माउंट, पहली बार जीसस क्राइस्ट जो है वो सब लोगों को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब फर्स्ट प्रवचन, पब्लिक में प्रवचन देना वही था, तो सब देते रहते हैं। और उसके बाद सब आ जाते उधर और भूख लगता रहता है, खाना नहीं है, तो उनके शिष्य पूछते हैं जैसे अभी क्या करें, इन लोगों को भूख लग रहा है, खाना है, बोले तो देखो टोकरी में क्या है उसको बांट दो। तो उसमें दिखाया है वहां लोग ब्रेड रहता है और मछली रहता है, बोले तो बस उसको बांट दो, सबको बांट दो। तो बोले क्या बांटे, लाखों लोग है और दो या चार लोग ब्रेड पड़ा हुआ है बस लोग। तो बोले तुम बांटते जाओ बस, तुम बांटे तो क्या हो, बोले चिंता मत करो तुम बांटो बस। तो एक को श्रद्धा रहता, बोलते नहीं बांट दो, बोल रहे तो बांटो। तो बांटते रहते और जैसा जैसा बांटते रहते बढ़ता रहता ही उसमें से, वो बास्केट भरता रहता और लाते, हजारों लोग लेते रहते हैं और उसमें निकलता रहता, लोगों को मालूम ही नहीं कहां जा रहे, पर लेते जा रहे हैं बस, सब लोग खाते रहते हैं। तो ऐसे एक लड़का उठा के जाता है और ऐसे बांटते बांटते वो खड़ी रहती है, वो दूर में खड़ी रहती है क्योंकि वो अपने आप को इतना पतित समझती है कि वो पास भी नहीं आने को अपने योग्य नहीं समझती, दूर से खड़े देखते रहती है। और उस समय कोई एक आदमी लाके उसको ब्रेक देता है। अब असली घटना क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर इस जो वीडियो में दिखाया है, पर ये तत्व को अगर हम समझेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसको मिलता है वो ब्रेड, जो उसकी कृपा है, जिसकी की कृपा से उसने एक्सपेंशन किया उसका। तो वो हाथ में देखती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि वो समझती है कि मैं इसको खाने योग्य नहीं, उस चीज को कृपा समझती हो, एक साधु की कृपा है पर मैं योग्य नहीं। अब वो खाने जाती है और बहुत रोती है, बोलती है नहीं मैं योग्य नहीं हूं, पर फिर भी स्वीकार करती उसको। और दूसरी जगह और एक दिखाया कि ऐसी एक वेश्या आके पैर पड़ती है और उसके रो रो के उनके चरण को धो देती है। तो लोग वहां के जो तथाकथित पंडित लोग होते हैं वहां के क्रिश्चियन चर्च के, वो तो बोलते हैं इस वेश्या को अंदर क्यों भेजा तुम लोगों ने, पर वो कहती नहीं तुम्हारे सारे पापे भी धुल गए, तुम्हारे जो ये आंसू है जिसे तुमने मेरे चरण को धो दिया, और वो समझती है कि उसका पैर मैंने भिगा दिया, गंदा कर दिया, तो अपने कपड़े से उसे पोछती हो। तो बोलती है ये जो आंसू है ये तुम्हारे सारे पाप धुल गए आंसू से, और अब फिर से ऐसा कार्य मत करो, फिर से पाप मत करो। सेम चीज नित्यानंद प्रभु ने जगाई माला को बोला, जगाई माला को बोला अब तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए पर अब फिर से पाप मत करो तुम बस। तो ये पश्चाताप जो हुआ आंसू से, हमने पश्चाताप के आंसू से पुराने पाप धुल गए। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तपस्या मतलब फिर से वो गंदे नाले में हम कूदेंगे नहीं। तो एक पुराने पापों के लिए पश्चाताप, वो पश्चाताप पहला स्विच, और ये दूसरा स्विच है कि फिर से जो मैंने ऐसा गंदे काम किए जिसके कारण मैं फंसा हुआ था, फिर से मैं नहीं करूंगा, और उसके लिए जो जरूरत है नहीं करने के लिए, जो जो वातावरण जरूरत है, जो जो चीजें जरूरत है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, उन चीजों को मैं स्वीकार करूंगा और जो प्रतिकूल है उसको मैं त्याग दूंगा, बस वो तपस्या है। आराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम, ना आराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम। अगर भगवान का कोई भक्ति कर रहा है तो तपस्या, कोई दूसरा तपस्या करने की जरूरत नहीं, और भगवान की भक्ति कोई नहीं कर रहा है तो हजारों तपस्या करने से भी कोई फायदा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तपस्या मतलब भक्ति, बस भगवान की भक्ति। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपो दिव्यम, हमको ऐसी तपस्या नहीं कि क्या बोलते हैं कुछ ठंडे पानी में हिमालय में बर्फ देखा यहां तक डाल के खड़े होना। एक्चुअली मैंने देखा, हम लोग इस बार जब गए थे बद्रीनाथ अलकनंदा में, हमने सोचा अरे प्रयाग, प्रयाग में आए, वो विष्णु प्रयाग है तो अलकनंदा और दो नदियां मिलती है, जहां भी मिलती है उसको प्रयाग करें। अच्छा रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में गए, बहुत ठंडी थी तो हमने सोचा प्रयाग में स्नान करना चाहिए। पहली ठंडी, उसमें कपड़ा निकालने का भी दिल नहीं करता है और उसमें अति नरी, तो ऐसा प्रणाम वणाम किए और हाथ रखा हुआ आचमन के लिए, तो ऐसा शॉक लगा मानो करंट लगा हो, तो फिर ओला भी उतरने का तो सवाल ही नहीं। तो सिर्फ आचमन करेंगे, आचमन करेंगे, बोला तो सवाल ही नहीं। तो अगर, और ये फैक्ट है, अगर एक मिनट तक अंदर रह गए तो आदमी मर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा बस। अगर कोई फिसल के नीचे गिर गया, तीन मिनट अंदर रह गया तो एकदम ऐसा सॉलिड होके बाहर निकले, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी हो, तो उस समय तीन डुबकी और गायत्री करना तो सवाल ही नहीं होता। तीन डुबकी लगाना भी बहुत तपस्या। और उसमें एक साधु आया, साधु आया और उसे गया अंदर चला गया और ऐसा किया, फिर अपना लोटा निकाला भरा, हमने देखा बाप रे अगर ये आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उसको देख के थोड़ा थोड़ा ताकत आया तो हमने आंख बंद करके जल्दी तीन घुसते ही तीन ऐसा डुबकी लगाया, फिर बाद में निकल गया ना। पर ऐसे लोग हैं कुछ लोग जो उस ठंडी में ऐसे पानी में जो करंट जैसा लगता है एक्चुअली उसमें यहां तक होके दिन भर ऐसे खड़े रहते हैं। वो लोग 100% शरीर नहीं हो सकता, उनका वही शरीर ऐसा मामूली नहीं हो सकता, मतलब उतना सीजन्ड हो जाते वो लोग। या गर्मी के दौरान पूरा गर्मी में 8 अग्नि लगा के वो लोग बीच में बैठ जाते हैं, तो मतलब चमड़ी को एकदम थिक स्किन बना देते हैं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से वो लोग परे जा सकते हैं। बोले वो तपस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा तपस्या आपके अहंकार को बढ़ाएगा। ये लोग देखो, ये लोग कुछ भी नहीं, हम लोग कितना कहीं भी जाके बैठ गया तो बैठ गया बस, एक बार नहीं डिसाइड किया खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। तो ये तपस्या जो है मेन चीज, तपस्या करने का जो उद्देश्य है उसका विरुद्ध पड़ जाता है, उसको अहंकार बन जाता है, मैं अभी नियंत्रण करता हूं प्रभु, मैं सबसे अच्छा हूं, दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूं। तो तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करना चाहिए। यस्मात् शुद्धे, हृदय शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्म सौख्यम, तब ब्रह्म सुख का आनंद होता है, भौतिक सुख नहीं। और ब्रह्म सुख का स्वरूप क्या है? अनंतम। तो ये तपस्या है, तपस्या मतलब भगवान की भक्ति, और भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको करना, चाहे हमको अच्छा लगे वो तपस्या है, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको ना करना, चाहे हमको जितना भी अच्छा लगे इंद्रियों को और मन उसको छोड़ना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। उससे बड़ी तपस्या कोई चीज नहीं, वो तपस्या जो हमारे अहंकार को दूर करे, क्योंकि दूसरी तपस्या हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। हम अगर ज्यादा फास्टिंग करेंगे, लगता है ये लोग सब खा रहे, देखो भोग करने में लगे हुए हैं, और मैं ये सब ऐसा नहीं करता। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या है प्रणापी सुनी चे ना तरोरी व सहिष्णु अहमानी न मानवे न कीर्तनी, सबसे बड़ी तपस्या है। तो भागवत में हम लोग एक सुंदर उदाहरण आता है जहां ये वर्णन है इसका, कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन वो सिर्फ सुनता है कि भौतिक संसार कैसा है, कितना तकलीफ है, और संसार बहुत सुंदर है, ठीक के बाद वो पता है उसको, और वो प्रकारपूर्वक तपस्या करके अपना जीवन को सफल कर लेता है। सद्गुरु बुद्धिमान है, सुन के समझ जाता है। उससे कम बुद्धि वाला जब दूसरे के जीवन में देखता है तो उसको समझ जाता है, बाप रे ऐसा तकलीफ, ऐसी बीमारी, इसमें हमको नहीं पड़ना। उससे भी कम बुद्धि वाला है जो स्वयं अनुभव करता है तब जाके उसको समझ में आता है, और फिर वो गंभीर सीरियस हो जाता है वो भक्ति में। और जो सबसे कम बुद्धि वाला है, अनुभव करता है, समझता है, और थोड़े दिन के बाद फिर से भूल जाता है, लगता है नहीं पहले बार गलती हो गया, अभी नहीं होगा, अभी मैं सुधर जाऊंगा, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी मैं भोग करूंगा बिना फंसे, बिना संसार में फंसे नहीं, भोग करके फटाक से निकल जाऊंगा, ज्यादा ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। तो तीसरे स्तर का जो है, जो देखने के बाद अनुभव होता है, उसका उदाहरण अजामिल। अजामिल ने बहुत कुछ सुना था, छोटे उम्र में भक्ति कर रहा था, सब कुछ था उसे मालूम था, सुना था, पर उसने कुछ ऐसा देखा, एक दृश्य देखा, मन उसका भटक गया, वो उसे मालूम था पर फिर भी वो फंस गया। पर मृत्यु के समय उसको डायरेक्टली अनुभव हुआ कि क्या होने वाला है बाद में, क्योंकि डायरेक्टली उसने देखा यमदूतों को। तो उस समय उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, उसको सच में है क्या यमदूत, कोई नहीं, उसने एक्चुअली देखा, पकड़ के खींच के ले जा रहे थे उसको, खींच भी लिए थे एक्चुअली उसको बाहर। तो देखने के बाद उसको समझ में आया, अच्छा ये स्थिति मेरी होने वाली है, अभी मेरे को खींच के ले जाने वाले। और उसके बाद भगवान की कृपा हुई, नारायण नाम लिया था उसका, पिछला सुकृति था, अच्छा ना भगवान की बुद्धि दी थी उसको, नारायण नाम रखा था, नारायण का नाम लिया, तो चार विष्णु दूत आ गए, उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने छोड़ दिया, और वो भी चले गए, यमदूत तो चले गए, उनको हरा के भगा दिया उनसे विष्णु दूतों ने, उनको कृतज्ञता पूर्वक इधर देखा तो वो भी चले गए, विष्णु दूत भी चले गए, बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले वो चले गए। और तब यहां उसका वर्णन सुनते हैं, तब अजामिल को अपने सारा जीवन जो है फ्लैशबैक गया, और पूरा जैसे हम लोग वीडियो को रिवाइंड करके पूरा फास्ट में देखते हैं, पूरा दो घंटे का जो वीडियो है उसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, पूरा कंडेंस। तो उसने अपने पूरे जीवन का मतलब कैसा मैंने देखा बर्बाद कर दिया। और तब ये कहता है, यहां से शुरू करता है, पहले उसको लगता है कि मैंने इतना पाप काम किया है कि मुझे तो नरकीय स्थिति में डालना चाहिए, ऐसे लोगों को जहां जो सारे नियम तोड़ते उन लोगों को डालना चाहिए, वहां डालना चाहिए। क्या सचमुच में मैं सपना देखा? हमारे नाथ जी प्रभु ने जो रिसेंटली यमदूतों को देखा, उनको पकड़ने नहीं आए थे, बगल सामने वाले व्यक्ति को उन्होंने नानंतों को डिटेल में बताया, आप पूछ सकते कभी, उसका रिकॉर्डिंग भी किया उन्होंने, डायरेक्टली देखा उन्होंने कैसे आए थे, उसका वर्णन किया वैसा। तो उसके बाद ऐसा लगता है, व्हाट इज अ ड्रीम आई सॉ और व्हाट इज रियलिटी, तो उठे तो बोलता सब सपने में देखा मैं, तो सच था, मैं खतरनाक लोगों को देखा जो रस्सी लेके आए थे मुझे ले जाने के लिए, अभी कहां चले गए वो, और वो महान चार महात्मा और सुंदर शरीर वाले जिन्होंने मुझे छुड़ाया और नरक में जाने से बचाया, वो भी चले गए, क्या ये सपना था या सचमुच में मैंने देखा। पर उसका असलियत क्या है, मैं सचमुच में पश्चाताप हो रही है कि मैं सही में बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूं और मैं बहुत ही पाप कर्म किया हूं, पर क्योंकि कुछ शायद कुछ अच्छे कर्म किए थे मैंने कि ऐसे चार महात्माओं को देखा जो मुझे बचा दिए, और मैं बहुत ही उनके आने से मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, अगर वो नहीं आते, मेरा थोड़ा सुकृति नहीं होता, तो ऐसे जो वेश्या के साथ घूमने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम मेरे मुंह से कैसा आता जब मैं शरीर छोड़ रहा था। और यहां देखिए ये दो तीन चार श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजामिल कहता है, आई एम ए शेमलेस चीटर हु हैज किल्ड हिज ब्रह्मिनिकल कल्चर, इंडीड आई एम सिन पर्सोनिफाइड, वेयर एम आई इन कंपैरिजन टू द ऑल ऑस्पिशियस चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड नारायण। उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैं ऐसा मतलब बेशरम आदमी हूं, ये सब जानते हुए भी मुझे मालूम था और फिर भी मैंने ऐसे पाप कर्म किए, और मेरे मुंह से भगवान की कृपा से एक नाम भगवान का नाम निकल गया और ऐसा मैं बच गया।
तो प्रभुपाद जी तत्पर में लिखते हैं, दोज एंगेज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग द होली नेम ऑफ नारायण कृष्ण थ्रू द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर वॉट अवर पोजिशन वॉज बिफोर वी केम एंड वॉट इट इज नाउ. We had fallen into abominable lives as meat eaters, drunkards and women hunters who performed all kinds of sinful activities. But now we have been given the opportunity to chant Hare Krishna mantra. Therefore we should always appreciate this opportunity. By the grace of the Lord, ये उनकी कृपा से हुई है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पश्चाताप किस लिए होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए कि एक सौभाग्य, एक बहुत ही सुनहरा मौका हमें मिला, किसी ने हमें उपहार फ्री में, मुफ्त में उपहार दिया है, और ये उपहार पाकर भी उस उपहार को हमने पैर में डाल के कुचल दिया, लात मार दिया. जैसे वो तुरास मुनि ने विष्णु के यहां से आ रहे थे और फर्स्ट क्लास गार्लैंड लाके इंद्र को दिया, और इंद्र ने क्या किया, उसे लिया और हाथी को दे दिया, हाथी ने अपने पैर के नीचे डाले, कुचल दिया. तो इस तरह से क्या उपहार मिला है? मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम. सुदुर्लभ और सुलभ से सुदुर्लभ उपहार मिल गया है मनुष्य योनि में. और भी कहा, मनुष्य योनि तो एक, और मनुष्य योनि अफ्रीका में हो सकता था, अंडमान आइलैंड में हो सकता था, बट भारत भूमि में जहां वैदिक संस्कृति उपलब्ध है, तो एक है कि मनुष्य योनि मिली है, सुलभ हमने कोई कोशिश नहीं की, अपने आप मिल गया, और सुदुर्लभ है. और दूसरा, भारत भूमि में, भारत और पहला मनुष्य जन्म जा डबल. और तीसरा सबसे ज्यादा, मतलब सोने पे सुहाग जैसे बोलते हैं, उसमें एक सदगुरु के आश्रय मिल गया, भगवान की भक्ति का एक मौका मिल गया. बोले ये तीनों को प्राप्त करने की हमारी कोई योग्यता नहीं है, उपहार मिला है. और इसके बाद हमने अभी तक इसको कुचल के डाला, हमें लग लग मांसाहार, नशा, जुआ, सब कुछ करे, पाप करने लगे थे, जो डायरेक्टली नरक ले जाने वाला था हमको, पर उसमें से हमको उठाया गया. इसी तरह से हम उठ गए, चार लोगों ने आके उठा दिया, इधर बचा दिया, इस तरह से उनके प्रतिनिधि आके हमको किसी तरह से उठा दिए कम से कम. तो एक के तीव्र पश्चाताप, पश्चाताप मतलब अब तक जो है मनुष्य जीवन ऐसा बर्बाद हो गया, तक हम नहीं आए, पाप कर्म करते हुए नरक योनि में एकदम रॉयल रोड टू हेल जा रहे थे, कम से कम ब्रेक मारा किसी ने उस गाड़ी को, और वो गाड़ी को ऐसा घुमाया, बोले इस तरफ जाओ, उधर नहीं,
वो रास्ते में.
तो एक एक कृतज्ञता, अरे पश्चाताप. दूसरा एप्रिसिएशन मतलब ये जो
हमको मिला है,
जो उपहार, ये खास उपहार है, ये महामंत्र जो है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न, डायरेक्टली भगवान की कृपा मिली है. एप्रिशिएट जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो लाखों मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्ध है, ये कृष्ण भावना सबको नहीं मिलती. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, सबको नहीं मिलती है. करोड़ों करोड़ों लोग हैं यहाँ बगल घर में बैठे हुए सबको, पर ये नहीं मिली उन लोगों को. पर किसी तरह से एक तो पश्चाताप किया, ऐसे हमने समय गवा दिया, और जो मिला है उसका पूर्ण महत्व क्या है ये जानना, कि एक मनुष्य योनि मिली है, दूसरा भारत भूमि में जन्म मिला है, तीसरा भाग्यवान को भक्ति लता बीज मिली. भाग्यवान मतलब कौन? इसको लॉटरी लगाओ, भाग्यवान कहते हैं. भाग्यवान मतलब जिसको भगवान के संबंध में ज्ञान मिले वो भाग्यवान. भाग्यवान मतलब जिसको ऐश्वर्य मिला है, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य मतलब भगवान, ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य से समग्र से. तो भगवान के साथ जिसको संपर्क मिल गया, भूला हुआ जो कनेक्शन फिर से जुड़ गया, वो असली में भाग्यवान है. जिसको 10 करोड़ मिला वो भाग्यवान नहीं है. जो अचिंत्य गुण स्वरूपम भगवान, उनका कनेक्शन मिल गया, वो भाग्यवान. तो एप्रिसिएशन, और फिर दूसरे श्लोक में, पहले तो उसको बोला मैं इतना पतित था और ऐसी कृपा मिल गई, और तुरंत दूसरा क्या सोच रहे, देखिए दूसरा श्लोक में कहता है, सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्ते इंद्रिया निलह यथान भूय आत्मानम अंधे तमसी मज्जये। मैं एक ऐसा पापी व्यक्ति हूं, पर चूंकि अभी मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है, मैं पूर्ण रूप से अपने मन को नियंत्रण में करूंगा, मेरे जीवन को, मेरे इंद्रियों को वश में करूंगा और हमेशा भगवान की भक्ति में लगूंगा, ताकि फिर से मैं ऐसे घने अंधकार, भौतिक संसार के, भौतिक क्रियाओं के जो अंधकार है जीवन में, फिर से मैं नहीं गिरूंगा। वो उसने तीव्रता से दृढ़ता पूर्वक निश्चय किया, दैट इज तपस्या। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि जहां से हमको किसी ने उठा के बड़े प्रेम पूर्वक ऊपर बैठाया, फिर से वो गंदे नाले में कूदो मत, कम से कम वो तपस्या है। तो एवरी वन ऑफ अस शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन, प्रभुपाद कहते हैं, ये जो दृढ़ता पूर्वक ये वचन ले रहा है कि अभी मैं देख लिया हूं, मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने देखा उसका परिणाम क्या है, डायरेक्टली अनुभव भी किया, ऑलमोस्ट फंस गया था, चंगुल में चला गया था, यमदूतों ने पकड़ के खींच भी लिया था मेरे को, बाहर वापस फिर से डाला गया मेरे को विष्णु दूतों के कहने पर। और इसी तरह से एक्चुअली यमदूत के हाथों में थे हम लोग, उसमें से पकड़ के भगवान के जो भक्तों ने पकड़ के हमको वापस डाल के उसको बाहर से निकाला, उनको भगाया उनको किसी तरह से। तो पहले का पश्चाताप होना कि अच्छा अच्छा खासियत मिला था, मैं अच्छे जन्म में था, पर थोड़े दुष्कर्म के कारण कहां चला जा रहा था। और तो एवरी वन ऑफ अस शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन, वी हैव बीन एलिवेटेड टू एन एग्जॉल्टेड पोजिशन बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। बड़े कृपा पूर्वक हमको एकदम उठा के उच्च स्तर पर हमको बैठा दिए गुरु और कृष्ण की कृपा से, एक उच्च स्थिति। वैष्णव, वैष्णव होना बहुत ऊंचा स्थान है, हम सोच भी नहीं सकते। वैष्णव देवता भी वैष्णवों के चरण का धूल लेना चाहते हैं। अफकोर्स पोटेंशियली हम स्कूल में एडमिशन लिए, वो बने नहीं है, हम लोग मारा जाता है, वो वैष्णव नहीं है, पर एडमिशन मिल गया है, सिर्फ टीके रहना है उसमें बस, और पास होते रहना है, अगले अगले जाते रहेंगे। ऐसा स्कूल में एडमिशन मिला है जहां बार बार बदलने की जरूरत नहीं, SSLC के बाद जूनियर कॉलेज के लिए वो कॉलेज और वहां से फिर से एडमिशन लेके यहां आने की जरूरत नहीं। ये जो है जगाई माता स्कूल से लेकर वो गोस्वामी के स्कूल तक, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने वाला एक ही स्कूल है। इसमें फिर से यूनिवर्सिटी के लिए बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ PhD मिल जाएगा, डॉक्टरेट मिल जाएगा, यहां से सीधा भगवत धाम। तो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो घुसे हम लोग अंदर, हालांकि एकदम ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में है हम लोग, चलेगा, पर जो लिफ्ट में एंट्रेंस मिल गया हमको, लिफ्ट में बैठो और बटन दबाओ, चुपचाप बैठे रहो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ हमको जीवित रहना है इसमें, बस इस आंदोलन में जीवित रहना, मरना नहीं चाहिए बस। लिफ्ट जा रहा है ऊपर, उसमें से अगर बीच में बंदर जैसा खोल के छलांग मार दिए तो हमारी गलती है, चुपचाप खड़े रहो। ऑपरेटर ने बटन भी दबा दिया, 14 माला है, 14 लोग को जाके 15वां बटन, मतलब वो भगवत धाम 14 माला, 14 भुओ में माज है, तो 14 फ्लोर के नीचे आते रहते बंदर जैसे। तो सदगुरु ने 15वां फ्लोर का बटन दबा दिया, वो है भगवत धाम। अभी सिर्फ टिके रहना है हमको, बस अपने आप ले जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति है, तो एंड इफ यू रिमेंबर दैट दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड प्रे टू कृष्णा दैट वी विल नॉट फॉल अगेन, अवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ये तपस्या है एक्चुअली, नहीं तो हम लोग जो पश्चाताप करेंगे, आज पश्चाताप करेंगे कल फिर से जाके वही काम करेंगे, तो वो पश्चाताप नहीं है। और रूप गोस्वामी उपदेशामृत में यहां से शुरू करते भक्ति, वाचो वेगम मनस जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषय हेत धीरा सर्वानपि माम प्रतिदिन शिष्य, यहां से शुरू कर रहे हैं। पश्चाताप हो गया, अभी तपस्या करो, और तपस्या क्या करो, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। बस ये वेग को, वेग मतलब वेग पूर्वक नरक ले जा रहे हैं हमको, उस वेग को ब्रेक डाल दिया सदगुरु की कृपा से, अभी उसको फिर से वहां चालू मत करो, रिवर्स घुमाओ बस। इसीलिए प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में तुरंत शुरू करते हैं, परीक्षित महाराज का प्रश्न से के कुंजन शौचवत, अरे बार बार लोग पश्चाताप करते हैं पर वो हाथी के स्नान के बराबर, संडे को जाके किया मंडे से फिर से चालू, संडे को जाके किया मंडे से फिर से चालू, वो पश्चाताप नहीं है। और उसके अंत में लिखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद के रियल प्रायश्चित मीन्स अवेकनिंग अवर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। सच्चा प्रायश्चित का मतलब है कृष्ण भावना भावार्थ को जागृत करना, जीव नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बनवाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करो ये उदय, ये उदय करने का एक मौका जो मिला है उसमें स्थित रहना सच्चा तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। मतलब भक्ति करना ही तो सबसे बड़ी तपस्या है, भक्ति में टिके रहना और भक्ति के अनुकूल चीजों को करना और भक्ति के प्रतिकूल चीजों को त्यागना, यही तपस्या है। और सही में अगर हमको पश्चाताप हुआ है तो इस चीज को छोड़ेंगे नहीं हम तो। और तपस्या तब तक यशस्वी रहेगा जब तक ये दो चीज है। दो चीज क्या, कि हमारा परिस्थिति क्या था पहले, रंग अच्छा नहीं है, इसको कलर थोड़ा चेंज करना था, और वो भी अच्छा नहीं है, वो क्या रूम बहुत एक ही साथ बड़ा रूम है, थोड़ा अलग रूम होना था, तो 10 रूम वाला फ्लैट मुझे 12 रूम वाला चाहिए। सबसे पहले वो भिखारी बैठा हुआ था उसको अहरितु की कृपा से एक फ्लैट का ये दे दिया और गाड़ी दे दिया, और बोलता है गाड़ी इसमें जो कुशन है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कंप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, कि हम लोग सही में अप्रिसिएशन नहीं कर रहे कि हमारी परिस्थिति क्या थी और कहां से क्या मिल गया हमको, तो उसको तीव्रता से लेंगे तो ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता पूर्वक, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, शिवदास ठाकुर से वो ब्रह्मचारी मांग रहा था मेरे को दर्शन चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, कीर्तन में थोड़ा भाग दो, बोले नहीं महाप्रभु ने मना किया, बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज, तो ठीक है उसको टोकरे में बैठा कर अंदर पीछे की छिपे रख दिए, और महाप्रभु कीर्तन शुरू किए, बोले कुछ आनंद नहीं आ रहा मेरे को, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो यहां नहीं होना चाहिए। तो शिवदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु कोई अभक्त यहां नहीं है, कोई अभक्त नहीं है, बोले फिर भी कोई तो है यहाँ जो नहीं होना चाहिए, बोले हाँ वो दूध पीने वाला एक ब्रह्मचारी है। तो महाप्रभु ने उसको इतना डांटा, हिल रहा था वो डर के मारे कांप रहा था, तो उसको भगाया वहां से और बाहर गया, तो ये नहीं सोच रहा मैं इतना अच्छा ब्रह्मचारी हूं सिर्फ दूध पी के जी रहा हूं और ये लोग रेस्टोर में नाच रहे मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिया, उसने गाड़ी बैठे भगा दिया, कभी नहीं सोच रहा, अभी बोल रहा था मैं अयोग्य हूं, मेरे को कम से कम शुरू का तो थोड़ा 4 सेकंड देखने को मिला चैतन्य महाप्रभु का डांस भक्तों के साथ, कम से कम एंट्री तो मिला वो जगह में, वो राशस्थली है जहां मुझे एंट्री तो मिला, कम से कम चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन 2 मिनट देखने को तो मिला, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, बस ये महाप्रभु की कृपा है। तो वो कृतज्ञता पूर्वक जब हृदय देखा तो महाप्रभु ने तुरंत उसे बुला लिया, बोले बुला आज से तुम रेगुलर आना करो लाइफ मेंबरशिप मिल गया। तो ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता और फिर ऑस्टेरिटी एंड डिटर्मिनेशन, तपस्या करना और दृढ़ता पूर्वक उसमें लगे रहना। तो इस तरह से तब वही शक्ति, वही संसार जो हमें बंधन का कारण था पहले, वही संसार अभी भगवत धाम जाने का कारण बन जाता है, क्योंकि हर एक स्थिति में हर एक मौके में हम ये देख रहे हैं कि इसके द्वारा हम कैसे भगवान की सेवा कर पाए, इसके द्वारा हम कैसे भगवान के पास जा पाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करते हैं कि द होल एक्सटर्नल एनर्जी माया जो है, महामाया जो हमें फंसा रही है, भगवान की कृपा से योग माया में परिवर्तित हो जाएगी और हमें भगवत धाम ले जाएगी, अगर हमारे अंदर ये पश्चाताप और तपस्या ये दो चीज हो। हरे कृष्णा।
कर रहे हैं ऐसे खींचा था नहीं कर रहे
कम से कम पता लगता है
कभी कभी थोड़ा पता लग जाता है कितने पावरफुल है ये। तो ये अब ये तो है डिटर्मिनेशन और फिर वो वापस चीज नहीं करना, लेकिन ये तीन गुणों को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि छुड़वा यार हमारे पीछे। जाएगी, क्योंकि वैसे ही है वही एनर्जी। अगर भगवान ने सोचा तो वो उल्टा का काम कर सकती है। तो ये अभी हीटर है
प्रश्न क्या है कि वो
जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद माया के लिए
हरे मतलब वही उनका दूसरा स्वरूप हमने देखा अभी मूल स्वरूप हरे मीन्स बाय द डिवोशनल एनर्जी नादिनी शक्ति एंड द सेम थिंग परवर्टेड आर द थ्री मोड्स। सो व्हेन वी से हरे ऑलरेडी वही प्रार्थना है हमारा वो पश्चाताप और तपस्या और कृतज्ञता और दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण बोलना है उसके अंदर आज सारा प्रार्थना है। ऑल प्रेयर्स आर इंक्लूडेड इन दैट। ऑफ कोर्स वी कैन प्रे टू माया देवी दैट यू प्लीज रिलीज योर होल्ड, बट एक्चुअली जब हम लोग महामंत्र बोल रहे हैं हरे हरे कृष्ण तो अपने आप वो अंतरंग शक्ति एंड शी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी लादिनी लादिनी शक्ति संबित संदिनी और लादिनी लादिनी इज द एसेंस ऑफ ऑल दी अंतरंग एंड वही है जो द्वारका में यू नो व्हाट इज दैट ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है ताभिर्य एव निजरूप तया कला भी उसका पहला ये क्या है आनंद चिन्ह रस प्रतिभाविता बने। तो जब भगवान राम बनते हैं तो राधा रानी सीता लक्ष्मी बनते नारायण बनते तो लक्ष्मी एंड व्हेन ही बिकम शिवा इन टच विथ कॉन्टैक्ट शी बिकम शक्ति दुर्गा सो इट्स एक्चुअली राधा रानी ओनली। सो व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण एक्चुअली दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो सेम थिंग विल मैनिफेस्ट इन अ डिफरेंट suppose a person repents decides not to do again and after some time does the same again but by intelligence he knows this should not be done so in this case does it mean he has to repent more than before chant more intensely than before or there is no other hope for him no other hope for him ho hi nahi sakta। अगर कोई समझता है कि मेरे को और कोई आशा है ही नहीं क्योंकि मैं इतना पतित हूं कि भगवान भी उठाने नहीं सकते मेरे को, इसका मतलब दो चीज है। उसका इतना अहंकार है कि मैं इतना नीचे गिर सकता हूं कि भगवान नहीं उठा सकते, और दूसरा अज्ञान के कारण वो समझता है कि भगवान की शक्ति नहीं उठ उठाने के लिए। तो भगवान की शक्ति को वो डिमिनिश या कम समझ रहा है और मेरा पति जो है मैं इतना महान हूं कि इतना नीचे गिर सकता हूं कि भगवान भी नहीं उठा सकता, वो अहंकार है उसका। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना पतित है कि भगवान नहीं उठा सकते, इम्पॉसिबल। सो तो जहां तक ये सवाल है कि हम जब हम फिर से कर रहे हैं सपोज कुछ दृढ़तापूर्वक करते हैं और फिर से जाते हैं तो इसका मतलब सही में हम लोग अप्रिशिएट नहीं किया हमारा पतित स्थिति क्या था और सही में अप्रिसिएशन नहीं है कि किस स्थिति में हमको भगवान ने लाया। तो जब ऐसे शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं सुनना चाहिए, सुनने से पता चलेगा कि हालांकि अगर भी हम एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए चार नियमों का पहले से हम लोगों ने पालन कर रहे थे पर अगर भक्ति नहीं कर रहे थे तो 100% मालूम होना चाहिए कि वो नरक की ओर जा रहे बस, या फिर ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे ऊपर नीचे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था बस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषयः। तो और कभी ना कभी तो फिर से फिसल के नीचे गिरेंगे ही वहां क्योंकि सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं। तो चाहे हम लोग एकदम पतित थे या भौतिक रूप से उतना पतित नहीं थे तमो सतुगुण में थे फिर भी वो अंततः पतित स्थिति ही है। और दूसरा चीज कि ये जो कृपा है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव समझना चाहिए एक्चुअली कैसा कृपा हमको मिला है। साधारणता हमको लगता है दूसरे लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी इस कॉल में है कर रहे हैं, तो उसका उतना फर्क नहीं समझ में आता सही में परंपरा में है कि नहीं, क्योंकि दूसरे भी कुछ दूसरा नाम ले रहे हैं, हम भी हरे कृष्ण अपना नाम ले रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, पर परंपरा में जो कनेक्शन मिली है वो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अच्छा, इसके बाद भी अगर जैसे कितने लोगों का ऐसा हुआ है तो वो क्या कारण है, इट इज बिकॉज ऑफ डीप रूटेड प्री कंडीशनिंग। बद्ध अवस्था इतना है कि मालूम है, हमारे हमारे मंदिर में एक भक्त थे, गृहस्थ थे वो, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़े समय के लिए, कम से कम 2 महीने के लिए मेरे को आश्रम में रहने दो, बहुत पहले 10 साल की पहले की बात, कम से कम 2 साल मेरे को, अगर 2 महीना आश्रम में रहने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि उनको स्मोकिंग का बहुत 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 आदत पड़ गया था, कर ही नहीं, रोक ही नहीं सकते थे, उनको मालूम था, बोलते थे ये सिगरेट है, ये तो मैं अपने नरक में जा रहा हूं और ये मालूम है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और बोल के सही में उनके आंखों में आंसू होता था, क्या कर रहा हूं, छी पैसा भी बर्बाद हो रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, नियम भी तोड़ रहा हूं। बाद में उन्होंने उस समय के टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला, उन्होंने बोला ठीक है आके रहो, और वो ऊपर आके जब करते थे और 6:30 साढ़े 6 को चले जाते थे कहीं, फिर जब आते थे वापस 7:30 बजे दर्शन के लिए, 7:15 बजे, तो उसमें एकदम फ्रेश होकर तिलक तिलक लगा के आते थे, तो हम उनको पता नहीं कहाँ जाते थे क्या, जैसे भैंस को घूमने कुछ होते थे, हम सोने के लिए नींद आ गया, वो बेचारा सिर गए हूँ। बाद में एक भक्त ने बोला कि अरे ये आदमी तो सिगरेट पीता है, नजर आता है मेरे को उधर आपके मंदिर के सामने उधर कोली गली में। तो फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी मेरे को सुबह इतना वो ये आ जाता है कि मैं जाता हूँ नीचे जाके कंठी माला निकालता हूँ, तिलक पहुंच के जाता हूँ और सिगरेट होके उसके बाद कुछ अच्छा कोई चॉकलेट वॉकलेट खा के पेपरमेंट खा के ताकि बास नहीं आए, वापस आके कंठी माला लगा के तिलक लगा के ऊपर आता था। तो बोले मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। हय गिरी प्रभु की परिस्थिति ऐसी थी, हय गिरी प्रभु बहुत मदद की प्रभुपाद को, पर किसी तरह से वो नियंत्रण नहीं कर पाया अपने आप, पर प्रभुपाद की बहुत कृपा उन पर थी, बहुत पूछ रहे अभी हमारे हय ग्रीवा कैसे हमारे हय ग्रीव, और मेरा प्रभुपाद उधर वो भी चले गए। बाद में ऑफकोर्स जो अगर आप एकदम सिंसियर हो और फिर भी नहीं कर पा रहे हो, भगवान बोला अभी आप संभालो, तो फिर भगवान संभालेंगे, और कैसा संभालेंगे क्या करेंगे आपके हाथ में मत छोड़ा, अब बाद में बात बोलना कि अरे ऐसा क्यों संभाल रहे ऐसा मत। लास्ट में उनको टर्मिनल कैंसर, वो इधर चले गए ऐसे ऐसे मतलब भोग करने की जगह, और एक दिन गोवा में थे, वो गोवा में एकदम फर्स्ट क्लास बेस्ट इंद्र तृप्ति की स्थिति में, तो एकाएक उनको पीठ में थोड़ा दर्द हो गया, तो डॉक्टर के पास गए और उन्हें बोला कि एक टर्मिनल कैंसर हो गया है, अभी तुम थोड़े दिन जियोगे बस, हय गिरी प्रभु को बोला गया। तुरंत वो समझ में आ गया तो कुछ नहीं कर सकता, और बाद में निवृंदावन आ गए और उन्होंने संन्यास ले लिया, और करते भी क्या, और बाद में ऐसा स्थिति आ गया उनको, तो बोलते थे कि 100% इंद्र तृप्ति करने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसा मतलब हमेशा बेड पे लेटे रहना, पर उनकी आंखों में आंसू थे, बोले भगवान ने मेरे को ऐसा स्थिति में डाला है जहां एक सेकेंड के लिए भी मैं विषय भोग के लिए सोच ही नहीं सकता, और बोले प्रभुपाद जी की कृपा है, बहुत खुशी थे वो, बहुत आनंद थे। अगर मेरे को इससे भी थोड़ा कम सीरियस कोई बीमारी देते और अगर ज्यादा टाइम देते कि तुम 10 साल रह सकता है तो मैं इतना सीरियस नहीं होता, तो भगवान ने मेरे को मालूम है इतना ही सीरियस बीमारी और इतना ही कम समय देंगे तो ही इसको समझ में आएगा। तो ऐसा मेरे को भगवान ने तत्वन कंपम सुषमिक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम विपाक हरे द्वाग वपुर वीर विदान नमस्ते। अगर सही में हम सिंसियर हैं और किसी तरह से बार बार फिसल रहे हैं, नहीं ले पा रहे और चिल्ला रहे प्रभु मैं नहीं संभाल सकता तुम संभालो, वो गलती आपने कर दिया एक बार तो फिर दोष मत दीजिए, भगवान पूरा संभालेंगे, और फिर वो जैसा करेंगे उन्होंने बता के रखा ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, और ये नहीं कर पाएंगे तो भगवान बोले ठीक है तुम बोल रहे हो तो ठीक है मैं करूं ठीक है। अरे ऐसा नहीं करना था, मत बोलो। तो भगवान करेंगे। और दूसरा चीज है कि कभी कभी हम लोग वापस जाते हैं, सपोज नहीं करने की इच्छा है फिर भी हम कर रहे हैं, ऑफकोर्स स्थूल रूप से शायद हम लोग चार नियमों को तोड़ेंगे नहीं, पर कभी कभी सूक्ष्म रूप से हमको जब फैसिलिटी मिल जाता है तो हो सकता है हम लोग करेंगे। उस समय भी अगर उसका आनंद नहीं ले रहे हम लोग, दे शुड नॉट बी एंजॉइंग स्पिरिट, अगर वो तीव्र इच्छा है कब मैं वो नियम को तोड़ूंगा और कब उसका आनंद लूंगा, अगर ये भावना है तो एक्चुअली कुछ गड़बड़ी है। पर विवश होकर हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाए और फिर गए, पर करते हुए भी बहुत, जैसे ये व्यक्ति था उसको बुरा लग रहा है, आंखों से आंसू आ रही है, अपने आप को धिक्कार रहा है पर फिर भी कर रहा है विवश होकर, तो फिर चलेगा। तो मतलब भगवान बुद्धि देंगे, वो शक्ति देंगे धीरे धीरे, अल्टीमेटली हमारे सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर है। और ये प्रवृत्ति नाम नो बोला जैसे ही पाप बुद्धि के, जैसा वो जोक है कि एक क्रिश्चियन जाता था और पश्चाताप करता था बॉक्स में जाके बोलना, और $10 दे के आता था, इतना पाप किया मैंने, उसको पश्चाताप, ये लो ये पाप क्या क्या किया बोलना और $10 दे के आना। रेगुलरली करता था, $10 हर हफ्ता जाके देता था और फिर अपना सारा पाप ये किया। और एक बार वो गया और उसने सारा पाप बताया, ये पाप मैंने किया, और $20 दिया उस फादर को। तो फादर ने बोला, अरे $10 $20 क्यों दिया? बोला, अगले हफ्ते मैं छुट्टी के लिए गोवा जा रहा हूं तो नहीं आ पाऊंगा, तो अभी से मैं दे रहा हूं मतलब अभी करने वाला हूं। मतलब वो प्रवृत्ति हो कि अभी कर रहा हूं, अभी तो करने ही वाला हूं, अभी से पश्चाताप मांग रहा हूं, तो मतलब पश्चाताप नहीं है हमको, सही पश्चाताप है, इसका मतलब फिर से वो करेंगे नहीं हम लोग। और अगर विवश कर रहे हैं तो उसमें भी आनंद नहीं होना चाहिए, उसमें मतलब घृणा होनी चाहिए कि क्या कर रहा हूं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, अरे वो छाछ पी रहे हो 3 दिन में एक बार, उसमें बोले छह कितना समय में निकाल रहा हूं। ऑफकोर्स ये हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, पर कहने का मतलब है कि एक्चुअली माया मतलब क्या, भोग करने की प्रवृत्ति, वो नहीं होना चाहिए बस। सेवा में थोड़ा आनंद मिल जाएगा वो ठीक है, पर भोग का आनंद उसका अगर तीव्रता से हम देख रहे, किस दिन वो आएगा जब मैं एक मौका मिलेगा मैं भोग करूंगा, वो मेंटालिटी अगर हो तो वो खतरा है। बस
महाराज बोल रहे थे तो वचन हैग्रीव महाराज के बारे में, he met him when he was about to die, बहुत टचिंग केस था। हैग्रीव महाराज was speaking to राधानाथ महाराज, was saying he at one time I was thinking I am enjoyer, I am controller, I can do anything what I want, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे हिलाने के लिए भी चार रोक चाहिए, मैं हिल भी नहीं सकता। And then tears were coming from his eyes, आंखों से आंसू आ रहे थे। Actually cancer was spread all over the body, in every cell practically, every cell was paining intensely, और वो बोलने लगे, I am crying. These tears are not because of pain in the body. These tears are because of I have displeased my spiritual master very much. Prabhupada expected so much from me, and I just could not fulfill his desire.
How?
Tears of repentance.
He was also telling. Yeah.
Is there Krishna?
के नहीं, क्या क्या मैं
कर सकता था
और वो नहीं किया। प्रभुपाद चाहते थे कि ये करो, जिसको ट्रांसलेट करो, कितना सेवा मैं कर सकता था, मैं नहीं किया।
और उसके लिए मैं रो रहा हूँ, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन इन द बॉडी, जो कि हमें कोई भी आदमी रोएगा पेन के लिए, कितना पेन था वो, बट ही वाज क्राइंग फॉर नॉट फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, वो बहुत टचिंग था। एंड देन से इज देयर कृष्णा, कृष्णा अस्तित्व में है, अगर कृष्ण अस्तित्व में नहीं है तो सब शास्त्र बेकार है, झूठ है, सब गुरु सारे शास्त्र सब झूठ है, यानी इससे इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज कृष्ण, And I am convinced if I think of Krishna in terms of death, I will go back home. That's what it is. Vishwas Merko. I am helpless and hopeless. I am completely helpless and hopeless. And what did Maharaj say? Maharaj ne unko bola, this is the difference between you and me. This is humility of Maharaj. You have completely realized that I am helpless and hopeless. I have not yet realized. I think I can do everything on my own still. But you are so great. Ayuri Maharaj, you have realized that I am helpless and hopeless and I am completely dependent on the mercy of Krishna. I have not yet realized that. But you have realized you are in best position, Maharaj. Maharaj was encouraging me. Both touching cases. Push.
Oh, okay.
Best cases, my heart. Maharaj was speaking about Maharaj. Final time.